नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन आर पियर्स की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन थियरी सिंबल्स सिग्नल्स एंड नॉइज सूचना सिद्धांत का सुलभ लेकिन गंभीर परिचय है। यह गणित संचार अभियांत्रिकी और वैज्ञानिक विचार के बीच सेतु बनाती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल सूत्रों से सूचना को मापना नहीं है बल्कि यह दिखाना भी है कि टेलीफोन रेडियो टेलीविजन और अंतरिक्ष संचार जैसी प्रणालियां संदेशों को दूरी और व्यवधान के बावजूद कैसे पहुंचाती है। पियर्स इस क्षेत्र की बौद्धिक पृष्ठभूमि से आरंभ करते हुए क्लॉड शैनन के केंद्रीय विचारों तक पहुंचते हैं। फिर वे प्रतीकों द्व्याधारी अंकों एंट्रोपी भाषा अर्थ कुशलकूट लेखन और शोरयुक्त माध्यम की क्रमबद्ध चर्चा करते हैं। गणितीय अंशों को आवश्यक स्थानों पर रखा गया है, इसलिए पुस्तक न तो केवल लोकप्रिय विज्ञान है न ही अत्यधिक औपचारिक पाठ्य पुस्तक। शब्दावली और गणितीय संकेतों पर परिशिष्ट इसे आरंभिक पाठकों के लिए भी उपयोगी बनाते हैं। इसकी खासियत यह है कि तकनीकी संचार के सिद्धांत को मनोविज्ञान साइबरनेटिक्स भौतिकी और कला के प्रश्नों से जोड़ा जाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, शैनन की दृष्टि में सूचना अर्थ नहीं बल्कि अनिश्चितता का माप है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक मोड़ यह है कि सूचना सिद्धांत रोजमर्रा के अर्थ में सूचना का सिद्धांत नहीं है। कोई संदेश सत्य है, उपयोगी है, सुंदर है या भावनात्मक है, यह प्रश्न इस गणितीय ढांचे का प्रत्यक्ष विषय नहीं बनता। इसका विषय है संदेशों के संभावित विकल्पों में अनिश्चितता कितनी थी और संदेश मिलने पर वह अनिश्चितता कितनी घटी। पियर्स इसी अंतर को स्पष्ट करके पाठक को भाषा और संचार के बारे में अधिक सटीक ढंग से सोचने के लिए तैयार करते हैं। यदि कोई घटना पहले से लगभग निश्चित है तो उसके घटित होने की सूचना कम होगी। इसके विपरीत कम संभावित घटना का संदेश अधिक सूचना वहन करता है। यही विचार एंट्रोपी तक ले जाता है, जो किसी स्रोत द्वारा औसतन उत्पन्न अनिश्चितता का माप है। एंट्रोपी को अव्यवस्था का ढीला पर्याय मान लेना पर्याप्त नहीं है। संचार के संदर्भ में वह संदेश स्रोत की सांख्यिकीय अप्रत्याशितता से जुड़ी है। इस आधार पर यह समझ आता है कि किसी भाषा में अक्षरों या शब्दों की आवृत्तियां समान नहीं होती, अतः हर संकेत को समान लंबाई में भेजना अक्सर अप्ययी है। पियर्स का विवेचन यह भी बचाता है कि हम सूचना सिद्धांत से मानवत इरादे और समझ की पूरी व्याख्या अपेक्षित न करें। सिद्धांत की शक्ति उसकी सीमित मापनीय समस्या को अत्यंत स्पष्ट बनाने में है। दूसरा, स्रोत प्रेषक माध्यम और प्राप्तकर्ता से संचार की समस्या को अलग करना। पियर्स संचार को एक ऐसी श्रृंखला के रूप में रखते हैं जिसमें संदेश का स्रोत, उसे संकेत में बदलने वाला प्रेषक, संकेत ले जाने वाला माध्यम, शोर, संकेत को पढ़ने वाला प्राप्तकर्ता और अंतिम गंतव्य शामिल होते हैं। यह ढांचा इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह अलग अलग विफलताओं को एक ही धुंधले विचार में मिलाने नहीं देता। स्रोत पर संदेशों की विविधता और आवृत्ति का प्रश्न है। प्रेषक के सामने उन्हें उपयुक्त संकेतों में बदलने का प्रश्न है। माध्यम की सीमाएं और व्यवधान अलग प्रश्न है, जबकि प्राप्तकर्ता को उपलब्ध संकेत से मूल संदेश का अनुमान लगाना होता है। इस विभाजन से यह भी समझ आता है कि एक ही सिद्धांत तारयुक्त संचार रेडियो डिजिटल नेटवर्क और चित्र प्रेषण पर क्यों लागू हो सकता है। माध्यम बदलने पर भौतिक संकेत बदलते हैं, पर संदेश को कूटित करना भेजना और शोर के बाद पुनर्निर्मित करना जैसी मूल समस्याएं बनी रहती है। पुस्तक संचार को केवल बोलने या लिखने की मानवीय क्रिया तक सीमित नहीं रखती, वह इसे संकेतों के विश्वसनीय संगठन और संचरण की सामान्य समस्या बनाती है। फिर भी यह ढांचा अर्थ और सामाजिक संदर्भ को अपने आप नहीं पकड़ता। पियर्स की प्रस्तुति का लाभ यह है कि पाठक तकनीकी दक्षता के प्रश्न और व्याख्या या अर्थ के प्रश्न को अलग स्तरों पर देखना सीखता है। तीसरा, द्व्याधारी संकेत और कुशल कूटलेखन से अनावश्यकता घटाने की विधि। पुस्तक में कूटलेखन और द्व्याधारी अंकों की चर्चा संचार के व्यावहारिक अर्थशास्त्र को सामने लाती है। संदेश को भेजने के लिए संकेतों की एक वर्णमाला चाहिए और दो स्पष्ट अवस्थाओं वाले द्व्याधारी संकेत तकनीकी प्रणालियों में विशेष रूप से सुविधाजनक होते हैं। लेकिन केवल हर चीज को शून्य और एक जैसे दो प्रतीकों में बदल देना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न है कि संदेश स्रोत की आदतों के अनुसार औसतन कितने संकेतों की जरूरत पड़ेगी। यदि कुछ अक्षर शब्द या संदेश बहुत अधिक आते हैं और कुछ बहुत कम, तो बार बार आने वाले तत्वों को छोटे कूट और दुर्लभ तत्वों को लंबे कूट देकर औसत लंबाई घटाई जा सकती है। एंट्रोपी इस बचत की सैद्धांतिक सीमा बताती है। यह विचार डेटा संपीड़न की आधार भूमि है, भले पुस्तक आज की फाइल प्रणालियों की भाषा में न लिखी गई हो। पियर्स भाषा को यहां एक सांख्यिकीय स्रोत की तरह देखने का अवसर देते हैं। भाषा में नियम, दोहराव और पूर्वानुमेयता होती है, इसलिए उसके संकेतों को अधिक कुशलता से प्रस्तुत किया जा सकता है। पर दक्षता और विश्वसनीयता एक ही चीज नहीं है। बहुत अधिक अनावश्यकता हटाने से शोर के बाद त्रुटि पकड़ना कठिन हो सकता है। इसलिए कूटलेखन की समस्या केवल कम जगह लेने की नहीं, स्रोत की संरचना और माध्यम की परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की समस्या भी है। चौथा, शोरयुक्त माध्यम और चैनल क्षमता विश्वसनीय संचार की सीमा तय करते हैं। शोर पुस्तक की केंद्रीय व्यावहारिक समस्या है। संकेत यात्रा करते समय यादृच्छिक व्यवधानों, विकृति या गलत पहचान का सामना कर सकता है। पियर्स के माध्यम से शैनन का निर्णायक निष्कर्ष उभरता है कि शोर होने का अर्थ यह नहीं कि संचार अनिवार्यतः अविश्वसनीय हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी माध्यम की सूचना वहन करने की एक अधिकतम दर होती है, जिसे चैनल क्षमता कहा जाता है। यदि संदेश की दर इस सीमा से नीचे हो तो सिद्धांततः ऐसे कूट बनाए जा सकते हैं जिनसे त्रुटि की संभावना बहुत छोटी की जा सके। यदि दर क्षमता से ऊपर हो तो केवल चतुर उपकरण या अधिक प्रयास से स्थायी समाधान नहीं मिलता। यह परिणाम इंजीनियरिंग में एक गहरा बदलाव लाता है। लक्ष्य हर संकेत को अलग से पूर्ण बनाने का नहीं, बल्कि लंबे संदेशों के लिए ऐसा कूट बनाने का है जो त्रुटियों को पहचान और सुधार सके। डिजिटल प्रतीकों का महत्व भी यही स्पष्ट होता है। स्पष्ट रूप से अलग अवस्थाओं को शोर के बाद निर्णय सीमाओं के आधार पर पहचाना जा सकता है। फिर भी सिद्धांत को जादुई गारंटी नहीं समझना चाहिए। क्षमता के निकट पहुंचने वाले कूट जटिल हो सकते हैं और लंबे खंडों पर काम कर सकते हैं, जिससे विलंब और कार्यान्वयन की लागत बढ़ती है। पुस्तक आदर्श सीमा और वास्तविक संचार प्रणाली के बीच इस अंतर को समझने की मजबूत बुनियाद देती है। अंत में, भाषा, मनोविज्ञान, साइबरनेटिक्स और कला में सूचना की उपयोगिता और सीमा। पियर्स इस पुस्तक को संचार अभियांत्रिकी तक सीमित नहीं रखते। वे भाषा और अर्थ, मनोविज्ञान, साइबरनेटिक्स, भौतिकी तथा कला से सूचना सिद्धांत के संबंधों की जांच करते हैं। इस विस्तार का मूल्य यह है कि पाठक देखता है कि पैटर्न, विकल्प, पुनरावृत्ति और पूर्वानुमान अनेक क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, भाषा में अक्षरों और शब्दों का वितरण संदेशों की सांख्यिकीय संरचना बताता है। इसी प्रकार नियंत्रण तंत्रों में प्रतिक्रिया संकेत किसी व्यवस्था को अपनी स्थिति के अनुसार व्यवहार बदलने देते हैं। साइबरनेटिक्स से संबंध इस बात में है कि संचार और नियंत्रण दोनों को संकेतों के प्रवाह, प्रतिक्रिया और अनिश्चितता के संदर्भ में देखा जा सकता है। कला के संदर्भ में पुस्तक यह संकेत देती है कि पूर्ण नियमितता और पूर्ण यादृच्छिकता दोनों अनुभव की दृष्टि से सीमित हो सकती है। फिर भी पियर्स इन संबंधों को एक सार्वभौमिक कुंजी के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। किसी कविता का सौंदर्य, किसी कथन का नैतिक महत्व या किसी व्यक्ति की मानसिक अनुभूति को केवल विडों या एंट्रोपी में समाप्त नहीं किया जा सकता। यही सावधानी पुस्तक को उपयोगी बनाती है। वह पाठक को गणितीय विचार को नए क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रेरित करती है, पर यह चेतावनी भी देती है कि मापे जा सकने वाले संकेत और मानवीय अर्थ एक ही स्तर की वस्तुएं नहीं है। निष्कर्ष में, एन इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन थियरी। सिंबल्स, सिग्नल्स एंड नॉइज उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो डिजिटल संचार, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, भाषा विज्ञान, AI या वैज्ञानिक विचार के इतिहास में प्रवेश करना चाहते हैं। गणित से पूरी तरह अपरिचित पाठक को कुछ अंशों में धीमे चलना पड़ सकता है, लेकिन पियर्स की व्याख्यात्मक शैली, शब्दावली और संकेतों पर परिशिष्ट प्रवेश की बाधा कम करते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को इससे एंट्रोपी, कूटलेखन और चैनल क्षमता के पीछे का वैचारिक ढांचा मिलेगा। गैर तकनीकी पाठक के लिए इसका लाभ यह है कि वह सूचना, संदेश, संकेत और अर्थ जैसे अक्सर गड्डमडड किए जाने वाले विचारों को अलग अलग समझ सकेगा। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता आधुनिक संपीड़न, डिजिटल संचार और त्रुटि सुधार की बुनियादी सीमाओं को पहचानने में है। इसकी बौद्धिक उपयोगिता इससे भी व्यापक है, क्योंकि यह दिखाती है कि किसी समस्या को सही अमूर्तन में रखने से कितनी विविध तकनीकों को एक सिद्धांत के अंतर्गत समझा जा सकता है। अधिक आधुनिक पाठ्यपुस्तकें विस्तृत अभ्यास, नवीन कूटों और समकालीन अनुप्रयोगों में आगे जा सकती है। पियर्स की पुस्तक उनसे अलग इसलिए ठहरती है कि वह कठोर मूल सिद्धांत को ऐतिहासिक संदर्भ, सहज उदाहरणों और भाषा, कला तथा मन के प्रश्नों से जोड़ती है। यह पाठक को केवल गणना करना नहीं, सूचना सिद्धांत क्या मापता है, क्या संभव बनाता है और किन बातों को अपने दायरे से बाहर रखता है, यह समझने में सहायता देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन आर पियर्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।